हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। या हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा और वेद की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। मौका मिलने पर अंकुश शिवांशा के पास आया और उसे फिर से मैन्युपुलेट करने लगा था। उसने उसे वेद को जहर देने पर मजबूर कर दिया था। पार्टी के बीच में जब वेद के कदम लड़खड़ा गए थे और वो लगभग गिरने वाला था, अंकुश को लगा कि अब उसके लिए जहर का असर होने लगा है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक शिवांशा जल्दी से उठी और वेद को संभालने की कोशिश करने लगी। लेकिन वेद ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा तो शिवांशा तुरंत कुछ कदम दूर हो गई थी। वेद ने खुद को तुरंत संभाल लिया था। आप ठीक है ना, शिवांशा ने घबरा कर पूछा तो वेद ने हाँ में सिर हिला दिया था। नव्यांशी और आराध्या जल्दी से उसके पास आ गए थे। नव्यांशी भी बुरी तरह घबरा गई थी। वेद ने उन सबको शांत करने के लिए कहा, मैं ठीक हूँ, बस मेरा पैर अटक गया था। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। वहीं अंकुश उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था। अचानक वेद ने उसकी तरफ अपनी नजरें की और हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट दी। अंकुश इसके इस इशारे का मतलब नहीं समझ पाया। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर ने आकर उसे पकड़ा और कहा, मिस्टर अंकुश राजावत, आपको अभी अरेस्ट किया जाता है। आपकी फैक्ट्री में ड्रग्स मिले हैं, साथ ही वहां कुछ लड़कियां मिली हैं जो ट्रैफिकिंग के लिए भेजी जा रही थीं। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह रात के टाइम आप मुझे सबके सामने अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते हैं, मैं अपने हक अच्छे से जानता हूँ। अंकुश उनसे छूटने के लिए छटपटाने लगा। वेद ने प्रतीक की तरफ इशारा किया तो उसने मीडिया वालों का ध्यान उस तरफ कर दिया था। सभी लोग अब वेद के रिसेप्शन के बजाय अंकुश राजावत के अरेस्ट को कैप्चर करने लगे। राजावत फैमिली भी उनके पास आ गई थी और अंकुश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगी थी। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम भी इज्जतदार लोग हैं, ऐसे गिरे हुए काम नहीं करते, तेजेंद्र ने सफाई में कहा। वो मामले को दबाने की कोशिश करते उससे पहले वेद ने पुलिस के पास आकर कहा, मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको अपना जो भी प्रोसेस करना है प्लीज आप इस रिसेप्शन पार्टी से बाहर जाकर कीजिए। माफ कीजिए मिस्टर चौहान, हमें इस तरह आपकी पार्टी के बीच दखल देना पड़ा। बहुत दिनों से लीड मिल रही थी, अचानक सबूत मिला तो सोचा कि ये भाग ना जाए, बस यही सोचकर तुरंत अरेस्ट करने के लिए आ गए। भगा ना जाए से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं क्या कोई चोर या डाकू हूँ कि मुझे चोरी करके भाग जाऊंगा? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, अंकुश गुस्से में उन पर बिथरते हुए बोला। हाँ, अच्छे से जानते हैं, हम इस वक्त एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो मासूम नाबालिग लड़कियों को दूसरे देश में स्मगलिंग करने का काम करता है, अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के साथ ड्रग्स छुपाकर रखता है। बहुत लंबा जाने वाले हो तुम अंकुश राजावत, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा और अंकुश को वहां से खींचकर ले जाने लगे। जाने से पहले अंकुश ने एक नज़र वेद की तरफ देखा जिसके चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी। फिर उसकी नज़र शिवांशा की तरफ गई तो वो काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है शिवांशा ठाकुर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यही होता है जब लोग अपनी औकात भूलकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। मुझे बाहर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। अंकुश ने शिवांशा की तरफ देखकर मन ही मन कहा। राजावत फैमिली वहां बहुत बड़े प्लान के साथ आई थी। उन्होंने सोचा था पहले वो शिवांशा के जरिए वेद की जान लेंगे और फिर शिवांशा की सच्चाई सबके सामने खोलकर उसे गुनहगार साबित कर देंगे। वेद की स्मार्टनेस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया था। अंकुश के वहां से जाते ही प्रतीक ने सबके सामने अनाउंस करते हुए कहा, पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मुझे खेद है, प्लीज आप लोग पार्टी इंजॉय कीजिए। चौहान फैमिली वेद के पास आ गई थी। वेद बिल्कुल ठीक ठाक था, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि ये उसी का किया धरा है। हमेशा की तरह उसके भाई बहनों के मन में कोई सवाल नहीं था, बस चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि राजावत फैमिली जरूर उनके जश्न को बर्बाद करने के लिए आई थी और वेद को अपने दुश्मनों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। नव्यांशी वेद के पास गई और उसे हल्का सा हक करते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, मुझे पता है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया, मैं एंट्रेंस पर ही उन्हें बैन कर देता, वंश ने वेद की तरफ देखकर कहा। कभी कभी उन्हें वेद से इस बात की शिकायत होती थी कि वो किसी भी मुसीबत को उनके ऊपर आने से पहले ही खुद पर ले लेता था। अब वो बड़े हो गए थे, फिर भी वेद उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करता था। वेद ने गहरी सांस ली और वंश से कहा, सबक सिखाना जरूरी था, बाकी मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बस अपने काम पर फोकस करो और सही रास्ते पर चलो, मेरे लिए यही काफी है। वंश ने मुस्कुराकर उसकी बात पर सिर हिलाया। उन भाई बहनों के बीच प्यार देखकर शिवांशा के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट उभर आई थी। वेद ने फिर वंश से कहा, अच्छा तुम पार्टी को कैरी ऑन करो, मुझे रेस्ट करना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं प्रतीक को बोल देता हूँ, वंश ने कहा। इससे पहले कि वो प्रतीक के पास जाता, वेद ने कहा, नहीं मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। वो सब अच्छे से जानते थे कि वेद बहुत कम मौकों पर ड्राइव करता था, उसे ड्राइविंग करना पसंद नहीं था। वो कुछ पूछते उससे पहले वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर अपने पास आने का इशारा किया। उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल गए थे। वेद बिना कुछ बोले शिवांशा को अपने साथ लेकर जा रहा था। वहीं उनके जाते ही अक्षत ने वंश का मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ भैया, प्रतीक भाई को बुलाने के लिए नहीं जाओगे? कमॉन, आपकी शादी हो गई है, इतना समझ में आना चाहिए ना कि सबको अपनी वाइफ के साथ प्राइवेट टाइम चाहिए होता है। अपने बकवास बंद करो, तुम्हें भाई कहाँ से रोमांटिक नजर आते हैं, वंश ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सभी सबके सामने रोमांटिक हों, मुझे तो इन दोनों के बीच एक अनसेट बॉन्डिंग नजर आती है। पता है ना, भाई को शोर पसंद नहीं है, तो भाभी हाथ में सिर्फ एक कंगन पहनकर रखती है और पैर में बिल्कुल पतली सी बिन घुंघरू की पायल। अब और क्या जानना है तुम्हें, आराध्या ने मुस्कुराकर बताया। अक्षत और आराध्या वंश को परेशान कर रहे थे, तो वहीं नव्यांशी चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। अगर वेद शिवांशा के साथ खुश था तो उसे शिवांशा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वेद और शिवांशा इस वक्त गाड़ी के अंदर थे। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। शिवांशा ने उसे चुप्पी को तोड़ते हुए धीरे से कहा, थैंक यू सो मच, हेल्प तो तुमने भी की है, वरना कभी पता नहीं चल पाता कि अंकुश उस फैक्ट्री में क्या कर रहा है, वेद ने ड्राइव करते हुए कहा। फिर उसने एक पल के लिए शिवांशा के चेहरे को देखा जिस पर मायूसी छाई हुई थी। उसके मायूस चेहरे को देखकर वेद के दिमाग में लगभग 2 घंटे पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, जब वो कॉल पर बात करते हुए ऊपर पहुंचा था। उसका शिवांशा के पास कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने रूम के बाहर उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से कमरे के अंदर गया। शिवांशा की किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त वेद ही वहां पर आया था। वेद ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। शिवांशा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसकी बिखरी हुई हालत देखकर वेद को समझने देर नहीं लगी। उसने तुरंत प्रतीक को कॉल करके कहा, फुटेज चेक करो और देखो कि मेरे बुक किए हुए कमरे में आराध्या के निकलने के बाद कौन आया था।
जी भाई, बस 5 मिनट दीजिए, प्रदीप ने जवाब दिया और जल्दी से सीसीटीवी कंट्रोल रूम में गया। उसने वहां अंकुश को देखा तो इस बारे में वेद को बता दिया था। वेद और प्रतीक से तो कहां छुपा हुआ था कि उन्हें अंकुश किस इरादे से शिवांशा के साथ जंगल में मिला था। वेद ने कॉल कट दिया और फिर शिवांशा के पास गया। उसे देखकर शिवांशा ने उसकी तरफ देखा। रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो गया था। वेद को देखते ही शिवांशा का रोना और तेज हो गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे मारना चाहते हैं ना, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मुझे अभी मार दीजिए, मुझे नहीं जीना है। वो हाथ जोड़ते हुए वेद के पैरों में गिर गई थी। कपड़े सही करो अपने, वेद ने सख्त लेकिन धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं क्योंकि शिवांशा का ब्लाउज एक कंधे से नीचे उतरा हुआ था। शिवांशा ने जल्दी से दूसरी तरफ देखा और अपने कपड़ों को सही किया। कब तक उससे ऐसे ही डरती रहोगी, कब से कर रहा है वो ये तुम्हारे साथ, वेद ने शांत लहजे में पूछा। हालांकि उसे शिवांशा के साथ दिल से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था। पहली बार अपनी नफरत भूलकर वेद को उस पर दया आने लगी। शिवांशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़रें नीचे कर ली थी। वेद समझ गया था कि वो उसकी बात का जवाब नहीं देने वाली है। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मत बताओ, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम्हारा भाई उसके कब्जे में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। कल को वो तुम्हें बेड तक ले जाएगा, तब भी क्या तुम ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहती रहोगी? शिवांशा ने हिम्मत करके वेद की तरफ देखा और फिर अपने साथ छुपा रखी बोतल को वेद के सामने कर दिया था। वेद के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, चलो तुम्हें कुछ तो अकल आई, वरना मुझे लगा था कि आज तो मेरा काम तमाम होने वाला है। शिवांशा हैरानी से वेद की तरफ देखने लगी थी। उसकी बातों का मतलब था। वो हमेशा से जानता था कि अंकुश ने शिवांशा को उसे मारने के लिए कहा था। उसकी नज़रों को समझते हुए वेद ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, वो मेरे घर पर आया था, उसने किस पल क्या किया मुझे अच्छे से पता है। मैं बस ये देख रहा था कि तुम कब तक उसके इशारों पर नाचती हो। तो अपने दादा की तरह तुम भी मेरी जान लेने का इरादा रखती हो? शिवांशा ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और रोते हुए कहा, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ, मेरा यकीन कीजिए। यकीन ही तो नहीं है, अगर नहीं मारना चाहती थी तो पहले दिन ही आकर सब कुछ बता देती। बोतल हाथ लगने पर जिस तरह तुम रानी के पीछे भाग कर आई थी, अगर सबके सामने पकड़ी जाती तो सोचा है कि तुम्हारे साथ क्या होता, वेद ने उसे डांटते हुए कहा। शिवांशा की नज़रें नीचे झुक गई थी। हाँ, उसे वेद को पहले भी बता देना चाहिए था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वेद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम चाहती हो ना मैं तुम पर यकीन करूं, तो खुद को साबित करो। मुझे अंकुश का कोई ऐसा राज बताओ जिससे मैं उसे मात दे सकूं। नहीं बता सकती तो नाचती रहो उसके इशारों पर, और आज दे देना मुझे ये जहर। शिवांशा ने कुछ पल सोचा और फिर हिम्मत करके कहा, एक फैक्ट्री है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने बचपन में उसे किसी के साथ कॉल पर बात करते हुए सुना था। वहां वो कुछ गलत करते हैं, एड्रेस मुझे नहीं पता है, बस वो जगह रेगिस्तान के आसपास है, वहां ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, बस उनकी ही फैक्ट्री है। इतना काफी है, वेद ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुक कर बोला, मेकअप आर्टिस्ट को भेज रहा हूँ, खुद को नॉर्मल करो और ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम उसका काम कर रही हो। अगर वो तुम्हें कुछ पूछे भी तो तुम यही कहोगी कि तुमने उसका काम कर दिया है। लेकिन मेरा भाई, शिवांशा ने घबरा कर पूछा। उनकी इस दुश्मनी के चक्कर में शिवांशा नहीं चाहती थी कि उसके भाई की बलि चढ़े। अच्छा, तो अब तुम्हें अपने भाई की परवाह हो रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे इसी वक्त मारने का कह रही थी, तब उसका ख्याल नहीं आया? वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मैं थक गई थी इन सबसे, आप नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है ये सब झेलना। मुझे समझना भी नहीं है, और किसने कहा तुम्हें कि ये सब झेलना जरूरी है? आवाज़ उठाने की कोशिश की होती तो ये हाल नहीं होता। ये तो अरमान राजावत तुम्हें अपने साथ दिल्ली लेकर चला गया था, अगर नहीं लेकर जाता तो तुम क्या ऐसे ही बंद कमरों में उसके बदतमीजियां सहती रहती? वेद ने मुठ्ठियां कसते हुए कहा। उसे अंकुश पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, जो वो एक बच्ची के साथ ना जाने कब से गलत हरकतें कर रहा था। वहीं वेद की बातों से शिवांशा ने महसूस किया कि वो उसके बारे में सब पता लगा चुका है। शिवांशा की तकलीफों की लिस्ट काफी लंबी थी, और वेद ऐसा इंसान नहीं था कि जो उसे समझ सके। वेद को पता था कि शिवांशा उसकी बात का जवाब नहीं देगी, तो वो उसे वहां छोड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद में मेकअप आर्टिस्ट ने उसे फिर से पहले की तरह तैयार कर दिया था, और बाद में वही हुआ जो वेद ने प्लान किया था। वेद और शिवांशा इस वक्त गाड़ी के अंदर थे। शिवांशा ने देखा कि वेद उसे घर ले जाने के बजाय गाड़ी यूटर्न पर ले रहा था, तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब उसे सच में वेद से डर लगने लगा कि कहीं वेद उसे मारने तो नहीं ले जा रहा है, जबकि वेद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी वेद का शांत सा बिहेवियर आपको कैसा लगा, चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।